ओम शांति। आज की मुरली में दो बातें पुरुषार्थ को तेज करने वाली याद है। आज की मुरली का सार करो याद, सवेरे पहुंचो। नहीं, वो सार नहीं जो मुरली में आता है, कुछ और सार था। उसके अलावा भी सार होता है। आज की मुरली किस लहर पे थी? नहीं, घर जाने की लहर भी आई नहीं थी। बाबा हमें क्या देने आया है? आज की मुरली यही लहर थी। उसमें बाबा तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज देने आया है। किसने छीन लिया था ये राज? रावण ने। अच्छा, कहां से आया था? लंका से। रावण ने, माया ने राज छीन लिया। इसमें पुरुषार्थ की क्या बात है? नहीं, नहीं। रोज सभी को एकांत में स्वयं से बातें करनी है। मुरली में था ये भी। कहां थे हम? इस झाड़ ने कैसे वृद्धि को पाया है? क्या था ये भारत? याद आई है मुरली? हीरो से जड़े हुए महल थे। तुम राज करते थे, छोटा भारत था। विश्व के मालिक थे तुम। कल परसों था विश्व के मालिक बनने की हुनर बाबा सिखाता है तुम्हें। तो जैसे अब इसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना है सबको। किस किस के पास राज्य था? जरा मैं दर्शन कर लूं राजाओं के। किस किस के पास था राज्य? थोड़ों के पास था, बाकी प्रजा थे सब। अच्छा, क्योंकि ये नशा उन्हें चढ़ेगा जिनके पास राज्य था। जिनके पास नहीं था वो सोचेंगे ठीक है, तो बाबा रोज कहता रहता है, उनके लिए ये कोई खास बात नहीं रहेगी। राज्य था हमारा, गहन चिंतन करें। इसको सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। चारों युगों में घूम जाएं, कैसे झाड़ वृद्धि को पाया। झाड़ माना आम का झाड़ नहीं, कल्प वृक्ष। इसको भी संसार में कोई नहीं जानता। सतयुग कैसे त्रेता में बदला, त्रेता कैसे द्वापर में बदला, कलयुग क्यों आया? आत्माएं भी तमो प्रधान बनती हैं क्या? ये तो किसी शास्त्र में चर्चा ही नहीं है। प्रकृति सतो रजो तमो से गुजरती है, पर किसी को ये नहीं पता क्यों क्यों गुजरती है। कुमार बोले, तुम्हारे पास भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। क्यों गुजरती है? हरे, आत्माएं तमो बनती हैं सतो से, आत्माओं के प्रभाव से प्रकृति जीव जंतु सबकी स्थिति नीचे उतरती आती है। तो कैसे ये कल्प वृक्ष वृद्धि को पाया? कहां से आत्माएं आई? ये किसी को पता नहीं। सब धर्म कैसे स्थापित हुए? मोटा मोटा ज्ञान है लोगों को। उनकी धर्म की आत्माएं उनसे पहले कहां थी? पता चल गया ना कहां थे? कहां थे माताएं? बताओ कहां थे? परम धाम में। ये माताओं को पता है, बिना पढ़ी माताओं को पता है, विद्वानों को नहीं पता। कहां से आत्माएं आती गई? लोग सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं? पशु जानवर पक्षी मनुष्य बनते गए। तो इसका मतलब सतयुग में पशु पक्षी बहुत रहे होंगे और कलयुग में बहुत कम, ऐसा है क्या? उल्टा है ना। इसका मतलब सतयुग में पाप ज्यादा हुआ होगा तो मनुष्य पशु बन गए, कलयुग में पाप कम हुआ होगा तो पशु मनुष्य बन गए, यही मतलब हुआ ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। शास्त्र वाले भी जानते हैं सतयुग में धर्म चार चरणों में था, माना फुल, तो वहां पाप कैसे हो सकता है। कलयुग में धर्म का एक चरण बचता है, यहाँ पाप कम कैसे हो सकता है। तो ये जो मनुष्य 84 लाख योनियों में जाते, ये बात भी गलत। तो कैसे धर्म वृद्धि को पाए। हर धर्म की पहले कम आत्मा थी, बाद में बढ़ी, कहां से आ गई ये किसी को पता नहीं है। क्या फायदा हुआ हमें ये सब जानने से, बोलो। अब इसका प्रैक्टिकल यूज करना है। हमें इस ज्ञान के मनन में मग्न रहना है। जो भी व्यर्थ संकल्पों से बचना चाहते हो भाई बहने, बहुतों की समस्या है, बहुत चलता है व्यर्थ, निगेटिव चलता है, इतना ज्यादा चलता है कि समझ में नहीं आता क्या करें। ये बाबा समझाते हैं, चारों युगों को देखो, चारों युगों में स्वयं का दर्शन करो, हम कहां थे, चिंतन करें उसका। समझ रहे सभी, गहन चिंतन। राज था हमारे पास, और जैसे ब्रह्मा बाबा को, ये बात सभी भूलते जाते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ में एक बहुत बड़ी गिफ्ट थी कि उन्हें अपने भविष्य का नशा बहुत था, इतना उसके बाद किसी ब्राह्मण को नहीं हुआ, लेकिन मामा को था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था। हमें पता चल गया या नहीं, कुमारों को तो नहीं चला पता, नहीं चला, बड़े भोले हैं। कभी कभी क्लास करते होंगे ना, भूले चुके। पीछे वाले भाइयों को पता चला, चला पता, चल सकता है अगर इस गहन चिंतन में जाएं, अगर बुद्धि को स्वच्छ करें। सब कुछ इधर भरा हुआ है बुद्धि में, ब्रेन में, लेकिन उसके ऊपर गंदगी बहुत डाल ली है, इसलिए वो पता नहीं चलता, दिखाई नहीं देता। लेकिन जो अपनी बुद्धि को स्वच्छ करेंगे, उन्हें 84 जन्मों का स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा। और बाबा ने ये बताया हुआ है अंत में बहुतों को, अपने पूरे जन्मों का स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि जिनकी बुद्धि क्लीन हो जाएगी, स्वच्छ। जो भी इस बात को समझ सके भाई बहने, वो ध्यान दे अपनी बुद्धि को स्वच्छ करने में। ये किसी के कहने से नहीं होगा, ये जिसको भी करना है स्वयं करना होगा। एक लक्ष्य यदि बना दिया जाए, मुझे अपनी बुद्धि को स्वच्छ करना है, कौन सी गंदगी निकालनी है गिनो, 10 बातें तो गिन दो। व्यर्थ चिंतन, परदर्शन, भाई बताएंगे, मैंपन, पीछे वाले बोलो नहीं पता क्या, परचिंतन हो गया, और सभी विकारों की गंदगी, और माताएं पीछे वाली, ठहरो पीछे वाली नहीं तो चुपचाप सुनती है, देवान, और बताओ, देवान तो सब हो गया, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, नफरत, परेशान रहना, चिंताएं, तेरा मेरा, मोह, माया, पैसे के प्रति आकर्षण, अहंकार, क्रोध, ये गंदगी है या नहीं। अब जो इसको साफ कर दे, झाड़ू लगाना आता है माताओं को, अब जिसके पास ये झाड़ू हो, आजकल मोबाइल में भी झाड़ू आती है एक, मेरा मोबाइल भी हैंग हो रहा था, मैंने ऐसे ही देख लिया क्लीनर लिखा हुआ, मैंने दबा दिया तो झाड़ू आ गई, झाड़ू लगाऊं। अभी आगे मैंने सोचा कहीं मैं और कहीं झाड़ू लगा दूं, सारा ही ना डिलीट हो जाए, मैं छोड़ दिया कि जो भी एक्सपर्ट है उसको देता हूं, उसको क्लीन कर दो, फिर क्लीन कराया वो, तब वो ठीक हुआ फोन। तो झाड़ू है बुद्धि को क्लीन करने की। देखो कितनी सूक्ष्म चीज, एक छोटे से फोन को, छोटे से लैपटॉप को क्लीन करने की चीजें उसी में हैं। बाहर से नहीं लाना कुछ, बुद्धि को क्लीन करने की चीजें भी बुद्धि में ही हैं। कौन सी? ठीक है, बोलते जाओ। शुभ चिंतन, मनन चिंतन, स्वमान, शुभ भावनाएं, आत्मिक दृष्टि, योग, शरीरीपन, ये अंदर ही है। इसके अभ्यास से बुद्धि क्लीन होती जाएगी। तो ब्रह्मा बाबा को जैसे भविष्य का नशा था, हमें भी हो जाए तो क्या फायदा होगा? बोलो। नहीं, और कुछ? भविष्य के सारे गुण और संस्कार आ जाएंगे। बाबा को जो भी देखता था, यहाँ छाती पर कभी बाबा लोप, बाबा की जगह श्री कृष्ण, कभी यहाँ दिखाई दे रहा है श्री कृष्ण, क्यों दिख रहा था? नशा हो गया था बाबा को, मैं ये शरीर छोड़कर श्री कृष्ण बनूंगा। तो वो स्वरूप बदल गया, जिसने जो स्वरूप बहुत अच्छा प्रैक्टिस में लाया होगा, अप्रत्यक्षता और विनाश के काल में संसार को वही दिखाई देगा। ये रहस्य है। तो भविष्य का नशा हो जाए, खोया हुआ राज मिल रहा है। जिन्होंने भी राजाई की हो वो इस नशे में आ जाएं। माया ने राज छीन लिया था, बाबा दिलाने आ गया है। कैसे छीना माया ने? देखो, माया के पांच बड़े शत्रु। नहीं, पहला राज गया बहुतों का काम वासना के कारण, दूसरा बहुतों का राज गया क्रोध और अहंकार के कारण, तीसरा बहुत राजा और शक्तिशाली लोग असफल हुए ईर्ष्या द्वेष के कारण। इतिहास आप पढ़ो, राजपूत बहुत बहादुर हुआ करते थे, लेकिन दिखाया है अहंकार के कारण, क्रोध के कारण, आपस में ईर्ष्या। एक राज वाला दूसरे से नहीं मिलता था, मैं पावरफुल हूँ, मेरे आगे तुम्हें झुकना है, मैं नहीं झुक सकता तुम्हारे आगे, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, युद्ध हुआ तो मैं तुमसे मदद नहीं ले सकता, मरने के लिए तैयार, मदद नहीं लूंगा। छिन्न भिन्न होते गए, राजपूतों के वंशज नष्ट होते गए। तो इन मनोविकारों ने राज नष्ट कराए हैं, बहुत राज नष्ट हुए इनसे। बाबा हमें इन पर विजय प्राप्त करा के राज दिला रहे हैं। हमें दो चीज विशेष करनी है। आज भी था मुरली में, तुम योग बल से, बोलो आगे, खोया हुआ राज स्थापित कर रहे हो। पुनः इस सृष्टि पर देवी स्वराज स्थापित कर रहे हो। तो राजाई उसको मिलेगी जिसमें योग बल होगा। दूसरा विशेष ध्यान देना है, ये प्रकृति जो हमारी पालना करती आई है, माँ की तरह रही है ये, इसको अब हमारी पालना की जरूरत है। कौन सी पालना चाहिए? बोलो, कौन सी पालना चाहिए प्रकृति को हमारी ओर से? पवित्रता की। पवित्रता प्रकृति की मूल शक्ति है। मुझे याद आ रहा था पीछे मुरली में सत्यता की शक्ति पे चली थी ना, साथ में प्रकृति के पांचों तत्व तुम्हें मदद करेंगे। सागर क्या करेगा? बहुत नहीं, झाड़ू तो बाद में लगाएगा, उससे पहले एक काम करेगा, इसके अंदर हीरे रतन बहुत हैं, वो भारत की भूमि पर ला देगा उछल के। धरती क्या करेगी? भूकंप, नीचे का खजाना ऊपर ले आएंगे, और बरसात सफाई करेगी। बहुत मरेंगे ना लोग, बदबू हो जाएगी ना, साफ कर देगी। तो प्रकृति, हाँ मुझे जो बहुत अच्छी बाबा की बात आज याद आ रही थी, लिखने वाले लिख लें, अव्यक्त महावाक्य है, जब तुम्हारी प्योरिटी नेचुरल हो जाएगी तब नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। प्राकृतिक प्रकोप, नेचुरल कैलेमिटीज माना प्राकृतिक प्रकोप, जब तुम्हारी प्योरिटी बिल्कुल सहज परफेक्ट हो जाएगी तब भूकंप होंगे। ये भी योगदान होगा प्रकृति के लिए। सातवीं सुनाया था, हम तो सो गए थे, बताया तुम्हारी नींद कैसी है, सबकी नींद खुल गई थी, तुम्हारी नहीं खुली। मैंने कहा भाई मैं तो घोड़े बेच के सो गया, अब मुझे तो पता नहीं चला, 10:30 ही आया था ना। तो ये बहुत बढ़ेंगे, अभी तो थोड़े सिग्नल दे रहे हैं कि हम भी तैयार हैं, तुम तैयार हो जाओ। तो हम अपनी प्योरिटी की मदद करें इस संपूर्ण प्रकृति को। भूकंप भी कल्याणकारी होंगे, ऊपर की धरती उपजाऊ नहीं रही है, नीचे की ऊपर आएगी तो धरती उपजाऊ हो जाएगी, बहुत अन्न देगी। पता है सबको किसान परिवार से कौन कौन माताएं हैं, हाथ उठाएंगे, हैं 4-5। वहाँ अनाज बोना, हल चलाना, बैल, ये वो जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रकृति स्वतः ही अन्न प्रदान करेगी। किसान लोग जानते हैं जब किसी फसल का सीजन होता है कुछ चीजें आप उगने लगती हैं जिन्हें वो ही नहीं होती, क्योंकि उनके दाने कहीं ना कहीं पड़े रह जाते हैं, वो अपने समय पे उगने लगते हैं। तो हम सभी भविष्य के इस नशे में रहें। राज्य मिल रहा है, राज्य स्थापित करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, बाबा साकार में बहुत कहते थे, उमंग दिलाते थे, क्या क्या कहना करना पड़ेगा, प्रजा बनानी पड़ेगी। अब जो प्रजा नहीं बनाएंगे वो दूसरे की भी छीन सकते हैं क्या, अगर छीन ले, नहीं वहां नहीं, यहाँ रहस्य है, एक पढ़ सकते हैं आप मुरली, 69 दिसंबर की मुरली पढ़ सकते हैं, दादियों की भट्टी थी, पुरानी दादियों की, उसमें ये महावाक्य चले थे, विश्व महाराजन कौन बनेंगे। तो बाबा ने कहा जैसे यहाँ इलेक्शन होता है ना, मान लो किसी ने बहुत सेवा करके प्रजा बना दी लेकिन वो राजा बनने के योग्य नहीं है, वो लड़ाकू है, उसके संस्कार दूसरे हैं, गुस्से वाला है, लेकिन कोई दूसरी आत्मा है जो उन सबके दिलों पर राज कर रही है, समझ गए ना, तो वो उनका राजा बन जाएगा। प्रजा छीन लेना, प्रजा किसी ने बनाई चली गई किसके पास, अब सोचो बाबा मामा की प्रजा कितनी बनी होगी, तब कितनी बनी होगी, बहुत थोड़ी सी, 1000 कुछ, बाबा के समय तक सारे ब्राह्मण ही 10,000 थे, उसमें से 5,000 तो चले गए थे, अव्यक्त होते ही विदाई ले गए, 5 बचे थे, थोड़ी बहुत और सेवा समझ लो, तो उनकी तो राज की संख्या 9,00,000 है ना, वो कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी, दूसरों की ले लेंगे वो। इसलिए प्रजा बनाने के साथ राजा बनना भी आवश्यक है, प्रजा की पालना करना भी आवश्यक है। कोई राजा तो बन गया हो लेकिन प्रजा को कष्ट देता हो, जल्दी प्रजा उसको उतार फेंकती है, इतिहास में हुआ है, प्रजा एकजुट हो गई, आंदोलन हो गए, राजा को तानाशाह को भी निकाल फेंका, भी हुआ ना मुस्लिम कंट्रीज में। तो प्रजा भी बनानी है, स्वयं को राजा भी बनाना है और प्रजा पालना भी करनी है, उन्हें सुख दें, सुख दें, उनकी समस्याओं का हल करें, उनकी बात सुनें, उन्हें इतना सहयोग दें कि उनके दिल पर राज करने लगे। अब दूसरी बात थी वरदान की, आज याद करो, माया से युद्ध है, इस युद्ध में घबराना नहीं है, थकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, परेशान भी नहीं होना है। किस किस माया के सेनापति से युद्ध है भारी, भाई लोग बताएंगे। माया के कौन कौन से सेनापति बड़े पावरफुल हैं, जिनसे लड़ते लड़ते राम के सैनिक भी घबरा जाते हैं, बोलो। काम वासना पहला विकार, छुपाने की बात नहीं, यही तो सबको हरा रहा है। बाकी तो मोटे हैं, पहला यही है जो सबसे पावरफुल जनरल है माया की सेना का, सबसे शक्तिशाली सेनापति। और इस काम वासना को कौन जीत सकेंगे, योग बल वाले, इसके अलावा कोई नहीं। अंदर तक इसको नष्ट करेंगे केवल योगी, योग युक्त आत्माएं। ये सभी को याद रखना है, कोई बूढ़े हो या जवान, 4 घंटे योग के बिना कोई इस माया को नहीं जीत सकता। इसमें बहुत थकते हैं और बाबा को छोड़ के जाते हैं, पीछे हटते हैं, हार मानते हैं। यही एक विकार है जिसके कारण भगवान को छोड़ते हैं उसके बच्चे। इस पर विजय पाने को अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए, कुछ संकल्प रख लेने चाहिए अपने मन में। एक बार बाबा को वचन दे दिया, बोलो आगे, वचन वापिस नहीं लेंगे। माताएं भी सुन लें और भाई भी, ये माया सबको हराती है, 20-30 साल चलने वालों को भी हरा रही है, आजकल खास हरा रही है। क्यों? चारों ओर इस काम वासना की आग लगी हुई है। युवकों में तो खास, सभी युवक संभलें, आग लगी हुई है। न चाहते भी मनुष्य इसके वश होता जा रहा है। इसलिए योग बल, आत्मिक दृष्टि, शरीरीपन, इसकी बहुत आवश्यकता है। इसको दबा दिया तो वो कहीं ना कहीं निकल के बाहर आएगा, परेशान करेगा। दूसरा क्रोध, क्रोध से लोग बाबा को तो कम छोड़ते हैं, पर क्या छोड़ देते हैं, हैं? परिवार से दूर हो जाते हैं, कोई उन्हें प्यार नहीं करता, वो शिकायतें बहुत करते हैं, अपनी नहीं दूसरों की। लेकिन जिस दिन वो इस चीज को रियलाइज करने लगे कि उनका क्रोध उन्हें कमजोर बना रहा है, उनका क्रोध उन्हें निगेटिव बना रहा है, उनका क्रोध उनकी विवेक शक्ति को नष्ट कर रहा है, उस दिन वो उस पे विजय पाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत लोग ये सोचते हैं मेरा क्रोध करना यथार्थ है, करना ही चाहिए, ये पर्सनालिटी है। लेकिन इससे सब कुछ नष्ट हो जाता है। एक बार क्रोध आ जाए एक दिन में तो योग लगेगा, खुशी भी गई, योग भी गया, एकाग्रता होगी नहीं। ये सभी मनोविकार हमारी एकाग्रता को नष्ट करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, लोभ। क्या कर रहा है लोभ, बोलो, ये भाइयों का विषय है। क्या कर रहा है लोभ, नचा रहा है सबको। माताओं में भी लोभ होता है क्या, मुझे तो पता नहीं, होता है। अच्छा, क्या कहते हैं भाई, गठरी बांध के तो रखती हैं। पर एक सर्वे हुआ कई लोगों ने उसकी आलोचना की, कई माताएं बहने नाराज हुई बहुत ज्यादा। वो सर्वे ये था, लोगों ने किया, अखबार वाले करते रहते हैं ना, कि भाइयों से करप्शन का काम माताएं कराती हैं, क्योंकि माताओं की डिमांड ज्यादा होती है। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, वो तो मैं पत्रकारों की कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं, बहुत डिमांड होती है, ये चाहिए, कहीं से पैसा लाके दो, मरो या बेच दो अपने को, हमें तो ये चाहिए। तो बेचारे क्या करे, ले लेते इधर उधर से। एक का भी हुआ ना आंध्र की तरफ, कितने करोड़ निकले उसके घर से, 900 करोड़ शायद, 800 करोड़, डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का 800 करोड़, आश्चर्य की बात है ना। किसने तो 1 लाख भी नहीं देखे, 50,000 भी नहीं देखे जीवन में, उसके घर से निकले 800 करोड़। अब देखो, इज्जत गई, नौकरी गई, जेल मिली, सारा परिवार दुखी, पैसा काम नहीं आया। इसलिए लोभ भी अनेक पापों का कहावत है। साकार बाबा के समय में ये कहावत प्रसिद्ध थी, लोभ पाप का बाप है, बहुत पाप करा रहा है मनुष्य, इसलिए इससे भी बचना है, क्योंकि इससे भी बुद्धि भ्रष्ट होती है। पाप का पैसा बुद्धि को भ्रष्ट करता है, और ऐसी आत्मा ईश्वरीय सुख नहीं ले सकती। मोह ये भी नचा रहा है मनुष्य को। अंतिम परीक्षा कौन सी होगी हम सबकी, नष्टो मोह। कौन कौन विजयी होंगे इसमें, माता हाथ उठा रहे, उठा दो उठा दो। अरे नशा तो रखो, होंगे ना हो बाद की बात है। तो पहले मोह किसका नष्ट करना है, अपने देह का। मोह का बीज कौन सा है, नहीं मेरा। बच्चों को भी मेरा समझते तब तो मोह है ना, पैसे को भी मेरा समझेंगे उसमें आसक्ति है, देह को भी मेरा तो आसक्ति है। जितना जितना इससे न्यारे होते जाएंगे उतना मोह नष्ट होगा, और मोह को जीतना सबसे सूक्ष्म है, सबसे गहरी बात। बाबा की मुरली से, साकार मुरली से, केवल अष्ट रतन ही अंत तक संपूर्ण नष्टो मोह बनते हैं। 100 में भी थोड़ा थोड़ा सा रह जाता है, 1-2%, उसके बाद 16,000 में और थोड़ा ज्यादा रह जाता है। जीत लेते हैं बहुत, लेकिन मोह अगर जीता नहीं तो ये बहुत कष्टदायक होगा विनाश काल में, क्योंकि जिसे हम मेरा समझते हैं वो सब जाएगा। जब विनाश हो जाए, होने लगेगा, तो हम सबको अपने को तैयार करना पड़ेगा, इसलिए अभी से तैयारी कर दें। कौन सी तैयारी बोलो, मुरलियों में रोज आता है, बोलो। ठीक बोल रहे, इन आंखों से जो कुछ दिखता है वो सब नष्ट हो जाएगा। देखो, अपने देह सहित, बच्चों सहित, धनमाल पानी, बिजनेस, दुकान मकान, सब गहने जेवर कपड़े सब जाएंगे या नहीं, लेकिन मिलेगा क्या, बोलो, मिलेगा क्या? माताओं को नहीं पता, पता है क्या मिलेगा, दीले बोल रहे हैं, स्वर्ग की बात सही है, जो कोई खिलौना हो प्लास्टिक का, क्या मिलेगा, माताओं की साड़ियों में भी हीरे जड़े होंगे, सोने हीरों से शरीर सजा होगा, एक एक चीज इतनी कीमती होगी कि सारे आपके शहर में भी इतना धनमाल नहीं है, साड़ियों में इतना लगा होगा, पहनेंगे ऐसी साड़ी, अच्छा जरूर। तो मोह को जीतने की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें। हाँ, इसलिए मैं अभी नहीं कहता, अभी प्रैक्टिस करें शरीरी होने की, आत्मिक दृष्टि की। और एक समय आएगा जब हमें अपने को तैयार करना होगा कि ये सब कुछ छोड़ के चलना है। जिसने जो भी धनमाल इकट्ठा किया है, पाप से या ईमानदारी से, वो सब छोड़कर जाना होगा। इसलिए रोज उसे देखकर ये संकल्प करना होगा, ये अब छूटना है। तो मन तैयार हो जाएगा, दुखी नहीं होंगे। नहीं तो देखो कैसे सीन होंगे, धरती धस गई, मनुष्य भी उसमें चले गए, आधे मरे आधे जिंदे हैं, अब उन्हें सब याद आ रहा है। रखा था सोना बहुत, अरे लड़की की शादी में देना था, उसका क्या होगा, हजार नोटों की गड्डी बहुत रखी थी बंद के लोकर में, उनका क्या होगा। तो बाबा तो गया परमधाम, उसकी याद तो नहीं आएगी, ये सब याद आएगा। इसलिए तैयारी करनी होगी, सब कुछ छोड़कर चलना है। तो बहुत सुख मिलेगा, क्योंकि जो कुछ है उसमें सुख नहीं मिलेगा, वो कष्टदायी हो जाएगा। सुख होगा ही छोड़ने में, सुख होगा ही बाबा की याद में, ऐसरीरी होने में। इसलिए अभी से सब प्रैक्टिस करें। घर में आपके जो भी संबंधी हैं, बच्चे हैं, छोटे बड़े, सब आत्माएं हैं। कौन है सब? आत्माएं हैं। मोह तो बढ़ता जाता है ना। देखो एक व्यक्ति बच्चा है, उसका मोह अपने माँ बाप से, बड़ा हुआ शादी हुई पत्नी से, बच्चे हुए फिर बच्चों से, फिर उनके बच्चे, फिर उनसे मोह। मान लो उनके भी बच्चे हो गए तो और मोह। तो मोह का जो जाल है वो बढ़ता जाता है। आत्मिक दृष्टि से ये किस में बदल जाएगा? निर्मल प्रेम में, आत्मिक प्रेम में, जो परमावश्यक है। मोह का स्थान प्रेम ले लेगा, आत्मिक प्रेम। क्योंकि अगर मोह छोड़ दिया और आत्मिक प्रेम नहीं रहा तो जीवन सूखा हो जाएगा। सन्यास, उदासी होते हैं ना सन्यासियों में, उदास रहते हैं, राख लपेटे हुए उदास पड़े हैं, कोई रस नहीं दुनिया में, वो तो हमारा मार्ग नहीं है ना। मोह त्याग का स्थान आत्मिक प्रेम ले लेगा तो वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हो जाएंगे। ठीक है। अहंकार, अहंकार का कौन सा स्वरूप है? मैंपन। अहंकार भी मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है। ले जाओ भैंस की माँ बाहर ले जाओ, सो रहा बच्चा। अहंकार, किसी को अहंकार का मोटा रूप रहता है, मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास शक्तियाँ बहुत हैं। आजकल देखते हैं ना समाचार, कभी कभी मैं भी सुन लेता हूँ। कल ही सुना तो बिहार में, कल परसों एक एमएलए लेडी थी, उसके लड़के ने गोली मार दी किसी को। तो एमएलए बनना माना बहुत अहंकार, देखे हमने कई, धीरे धीरे कम होता है। एमएलए बन गए माना वो समझते हैं राजा जो बन गए हैं। तो अहंकार से कई तो भरपूर रहते हैं, कई विनम्र होते हैं, सबकी सुनते हैं, कई केवल पैसा इकट्ठा करने में लग जाते हैं। तो ये अहंकार भी योगियों का महान शत्रु है। जो अच्छा योगी बनना चाहते हैं वो ये बात अच्छी तरह याद रख लें, क्रोध और अहंकार योगियों के महान शत्रु हैं। योग के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा, सेवाओं के मार्ग में सबसे बड़े विघ्न, जहां भी सेवाओं में विघ्न पड़े हैं क्रोध और अहंकार के कारण पड़े हैं। ईर्ष्या बहुतों को नष्ट करती है, बहुतों को आगे बढ़ने से रोकती है, बहुतों के दिल को जलाती है। पर चिंतन, संगठन में रहते कई लोगों को संगठन में रहना भारी हो जाता है, तो ये यात्रा ही भारी लगती है। माया को जीतना भारी लगता है और थक जाते हैं, कब तक ऐसे युद्ध करते रहेंगे। लेकिन हमारा युद्ध समाप्त हो जाए, अभी हमें इस युद्ध को समाप्त करना है तो क्या करेंगे बोलो? माया से युद्ध हो ही नहीं, ऐसी शक्तिशाली सेनाएं होती हैं किसी की कि दूसरा राजा बिना युद्ध किए ही समर्पण कर देता है। माताओं को तो नहीं पता है, भाई लोग जानते होंगे। हम भी यदि ऐसे शक्तिशाली बन जाएं, माया युद्ध किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दे, तो मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे माया समर्पण कर देती है। यदि हम इस खुशी और नशे में रहते हैं कि सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, तो माया समर्पण कर देती है। हमें याद रखना है, बहुत सुंदर प्रैक्टिस सभी को करनी चाहिए, मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ, विजयी आत्मा हूँ। ऐसा अभ्यास करने से, इस पे चिंतन करेंगे थोड़ा सा कि स्वयं बाबा ने, भगवान ने हमें याद दिलाया है कि हर कल्प में तुमने इस माया को जीता है, अब भी तुम्हारे अंदर इस माया को जीतने की शक्ति है, चाहे वो मोह ही क्यों न हो, चाहे आपको कोई परेशान करता हो आप परेशान रहते हो, कोई आपको दुखी करता हो आप दुखी रहते हैं, ये भी तो माया है ना। बहुत जब कोई भी फोन करते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, ये शब्द बोलते हैं। तो अगर हम याद करेंगे कल्प कल्प इस माया को जीता है, कितनी बार जीता है अनगिनत को कुछ गिनती दे दो, हजार बार, समझो 20,000 बार जीता है, तो अब जीतना कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? खेल। तो ये चिंतन करेंगे, बाबा ने हमें माया को जीतने की शक्ति दी है, बार बार हमने इसको जीता है, अब भी विजय हमारी ही होगी, ऐसी अपने को ट्रेनिंग दें। एक बार जिस मार्ग पर कदम रख दिया, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। संकल्प कर लो यही सब, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, कितना भी विरोध हो, कितना भी कष्ट दिया जाए, लेकिन एक बार बाबा का हाथ पकड़ लिया, बोलो नहीं, आगे बोलो, आगे बोलो, मैं इनसे बुलवाना चाहता हूँ, मैं कुमार बैठे, सच्चे मन से कह रहे, पकड़ा हाथ या नहीं, क्या उसने हमारा पकड़ा, उसे पकड़ा देना, तो वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, हम पकड़ते हैं तो वो छोड़, हम छोड़ देते हैं। तो अगर इस तरह के चिंतन में रहेंगे तो माया को जीतने की शक्ति जागृत रहेगी, एक्टिव रहेगी, और माया पर हमारी विजय होती रहेगी। तो हम ऐसा योग भी लगाएं, ऐसा अच्छा पुरुषार्थ करें कि माया दूर से ही समर्पित हो जाए। बाबा कहा करते हैं अव्यक्त में, माया जब देखेगी कि इनके साथ तो भगवान है, तो पास आने का साहस भी नहीं करेगी। एक और एक अच्छी बात आपको सुना देता हूँ। अभी अभी हम बिहार में गए थे तो हम एक भाई को भी ले गए पंजाब से अपने साथ, तो बता रहा था बहुत पढ़ा लिखा है, बी टेक एम टेक एम बी ए किया हुआ है, तो तो कहा, कोई दोस्त था बैठा था मेरा, मैंने उससे हाथ मिलाया, ऐसे करके हाथ मिलाया ना, उसके पास एक व्यक्ति बैठा था, उसने मेरा हाथ देखा, वो था ज्योतिषी, इसको पता नहीं था। उसने कहा हाथ ऐसे ही रखो जरा, रखा दो चार सेकंड, कहा तुम्हारे हाथ को देखकर तो ऐसा लगता है तुम्हारे साथ शिव रहते हैं, शिव रहते हैं तुम्हारे साथ, भगवान रहते हैं तुम्हारे साथ। ये भी ज्योतिष विद्या है भाई, मैं भी पहली बार सुना। तो मैंने उससे पूछा तुम्हारी ये प्रैक्टिस है क्या? कहा हाँ मेरी बहुत प्रैक्टिस है कि बाबा मेरे साथ है। क्या अर्थ हुआ इसका? जो प्रैक्टिस हम बहुत करेंगे आने वाले समय में संसार के लोगों को, वही हमें दिखाई देगा। इसलिए सभी बहुत प्रैक्टिस कर दें, भगवान मेरे साथ। दो गीत हैं हमारे, गालिया करो, भगवान हमारा और ईश्वर अपने, सब गाया करो। माताओं को भी गाना आता है ना, बाथरूम में गाया करो, नहीं तो वहां तो कोई नहीं देखता ना। खूब गाया करो, नशा चढ़ जाए, ईश्वर अपने साथ है। अब एक प्रैक्टिस आप सबके सामने रख रहे हैं, अब भी करके सोना और कल सवेरे भी करना, और जिसको अच्छा लगे वो करते रहना। अपनी 84 जन्मों की एक माला बनाओ मन में, 84 शरीर हो गए, 84 जन्मों की माला राइट साइड से बनाना। हमारा पहला देव स्वरूप, दूसरा, तीसरा, चौथा, 20 द्वापुर में आ गए, मनुष्य जन्म कलयुग में आ गए, जन्म लेते 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 अब यहाँ। क्या अभ्यास करेंगे? मैं आत्मा यहाँ से निकली पहले शरीर में, आत्मा को यात्रा कराएंगे अब, उसे थोड़ी दूर पर दूसरा शरीर है, पहले से निकली मैं आत्मा दूसरे में, आत्मा को जाते देखेंगे चमकती ज्योति, वहां से निकली तीसरे में, चौथे में, धीरे धीरे शरीरों को पार करते हुए आ गए इस शरीर में। बाबा आ गया लेने, कहा चलो बच्चे, 84 का खेल पूरा हुआ, और मैं आत्मा उड़ चली उनके साथ। कई चक्कर लगा लेना जरा, चलो अब इसी फीलिंग के साथ पूरा अभ्यास करेंगे।